यशया अध्याय 10, यशया अध्याय 10 पद 1 और 2। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। इस बात में मैं बहुत चिंतित रहता हूं। ऐसे आडंबरी प्रचारकों के पत्र जब पेंशन पाने वालों या वरिष्ठ नागरिकों के पास पहुंचते हैं और वे उन्हें कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग भेज देते हैं। ये तो सुख विलास में जीवन व्यतीत करते हैं, मोटर गाड़ियों में घूमते हैं और गरीबों और विधवाओं को लूटते हैं। परमेश्वर इनका न्याय करेगा। हाय इन प्रचारकों पर। दूसरा पत्रस में लिखा है, दूसरा पत्रस 2:1-3। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। इसी से आप उन्हें पहचानोगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। कोई भी प्रचारक जो बातें बना बनाकर आपको अपने फायदे का कारण बनाए वो सच्चा सेवक नहीं है, वो पाखंडी है। एक सच्चा चरवा भेड़ों को भोजन देता है, वो उन्हें लूटता नहीं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी सहायता करे। बाइबल में लिखा है कि अपने मुंह को पाप करने से रोक। मुझे सावधान रहना है कि मेरी जीभ मुझे बड़ी समस्या में न डाल दे। यशया अध्याय 10 पद 3। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन, ये वो दिन है जिस दिन प्रभु आकर न्याय करेगा। यशया अध्याय 10 पद 3 और 4। इस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागकर जाओगे और तुम अपने विभव को कहां रख छोड़ोगे? वे केवल बंदुओं के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है। वे बुराई के दल दल में फंसते जा रहे थे, फिर भी उससे निकलना नहीं चाहते थे। परमेश्वर का हाथ उनके प्रति बड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने अशूर सेना को उत्तरी राज्य इसराइल पर दंड देने के लिए इस्तेमाल किया। यशया अध्याय 10 पद 5-9। अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। वो मेरा क्रोध है, मैं उसको एक बख्तहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों के कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मानसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वो कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनों करकमिश के समान नहीं? क्या हामात अरपाद और शमरोन दमिश के समान नहीं? दूसरे शब्दों में यहोवा कहता है कि मैंने इन प्रमुख नगरों और दूसरे राष्ट्रों को तहस नहस किया है, क्या उनके समान नहीं है? मैं जाकर इन सब का नामो निशान मिटा दूंगा। यहां पर रोचक बात है, परमेश्वर कहता है मैं अशूर को, शमरोन को दंड देने के लिए और उसे उजाड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यद्यपि परमेश्वर ने अशूर को दंड देने के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि अशूर ने परमेश्वर के लोगों को नष्ट किया है, परमेश्वर उसे भी दंड देगा और उजाड़ कर देगा। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि इस कार्य के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। वे घमंड से भर गए थे। इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने से कुछ रोचक बातें पढ़ने को मिलती है। जहां पर हिजकिय्याह और यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए सन्हेरीब ने दीवारों के ऊपर बैठे यरूशलेम के लोगों से यूं कहा, हिजकिय्याह आपको ये कहते हुए गुमराह ना करें कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, वो आपको बचाएगा। कहां है वो सीरिया के देवी देवता और उन समस्त देशों के नाम लिए जिन्हें उसने पराजित किया था? ना उनका परमेश्वर उन्हें बचा पाया, ना ही तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर बचा पाएगा। हिजकिय्याह की बातों में मत आना, वो आपको गुमराह कर रहा है। ये कहते हुए घबराओ मत, परमेश्वर संभालेगा। सुनो, गौर से सुनो, उनकी देवी देवता उनको बचा ना पाए और आपका परमेश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा। और जिसके बारे में यशया नबी ने भविष्यवाणी की थी, इस प्रकार अशूर के सेनापति ने टट्ठा उड़ाया था। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि ये लोग कहते हैं मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। और उसी रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने अशूर की छावनी में जाकर उनके 185,000 सैनिकों को मार डाला। परमेश्वर ने अशूर की सेना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। इसराइली सुबह जैसे ही उठे तो उन्होंने देखा कि उनके दुश्मन तो लाशों के ढेर है। एक ही रात में परमेश्वर के एक दूत ने 185,000 सैनिकों का खात्मा कर दिया। ये बात मुझे बहुत ही रोचक लगती है कि एक रात में स्वर्गदूत कितना कुछ कर सकता है। मुझे प्रभु यीशु मसीह की उस बात की याद आ रही है जब प्रभु को बचाने के लिए पत्रस ने अपनी तलवार निकाली। बहुत बार हम लोग प्रभु को बचाने के लिए तलवार निकालते हैं, प्रभु मैं आपको बचाऊंगा। जिस दिन प्रभु को हमारी रक्षा की जरूरत पड़ेगी वो उस दिन बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। जब परमेश्वर अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता को महसूस करेगा, जब वो अपनी योजना आगे बढ़ाने के लिए असमर्थ होगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को वापस रख दो। आपको पता नहीं पतरस, मैं चाहूं तो मेरी रक्षा के लिए 10,000 दूतों को नहीं बुला सकता, वे तो मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर है। क्या आपको नहीं पता मैं चाहूं तो 10,000 स्वर्ग दूतों को बुला सकता हूं। पतरस अपनी तलवार अपने पास रख। जिस प्याले को पिता ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या मैं चाहूं तो उसे ना पीऊं? पतरस, घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहूं तो इन परिस्थितियों से बच निकल सकता हूं। वो क्या कहने जा रहा है? परंतु जिस प्याले को परमेश्वर ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? यदि एक स्वर्गदूत एक रात में 185,000 अशूर सैनिकों को मार सकता है, वो निश्चित रूप से वो 10,000 रोमी सैनिकों, महायाजकों और किसी के हाथों आसानी से यीशु मसीह को बचा सकता था। परंतु उसने मेरे और आपके लिए उस प्याले को पिया। उसने पिता की उस इच्छा के सामने अपना सिर झुका दिया। आपके और हमारे उद्धार के लिए मोल चुकाया, ताकि मुझे और आपको पापों की क्षमा मिले, ताकि आप और मैं उनके इस राज्य में अनंत काल वास करें। यदि भी परमेश्वर ने आपके लिए उसे खरीदा है, आपको दान के रूप में दे रहा है, क्या उस चीज को नकारना अपमानजनक नहीं है? क्योंकि उसके लिए उसने मोल चुकाया, केवल उसको आपको ग्रहण करना है। इसे ना लेना मेरे हिसाब से मूर्खता की बात है। यहां पर अशूर की सेना घमंड से भर गई, क्योंकि परमेश्वर ने समरिया को उन्हें सौंप दिया। वे लोग सोच रहे हैं कि ये सब उनके बलबूते पर हुआ। यशया अध्याय 10 पद 10 और 11। जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा, जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शमरोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं? दूसरे शब्दों में वे सोचने लगे कि उनके देवी देवता सबसे पराक्रमी हैं, इसलिए वे दूसरे देशों के ऊपर हावी हो रहे हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। वही बात जो सन्हेरीब का प्रवक्ता राबशाखे कह रहा था। यशया अध्याय 10 पद 12। इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का पलटा दूंगा। मैं उसकी बेइज्जती करके छोड़ूंगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। उनकी सेना के 185,000 सैनिकों को एक ही रात में मार दिया। राबशाखे शर्म के मारे वापस चला गया, और मंदिर में उसकी हत्या कर दी गई, जैसी कि भविष्यवाणी की गई थी। यशया अध्याय 10 पद 13 और 14। उसने कहा है, अपने ही बहुबल और बुद्धि से मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूं। मैंने देश देश के सिवानों को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर की नाई गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों की नाई मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है, और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने व चीची करने वाला ना था। अशूर को घमंड हो गया था कि मैंने ये सब किया, ये बात ना जानते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। वो तो केवल साधन मात्र था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे साधन की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए परमेश्वर ने उसके बारे में कहा। यशया अध्याय 10 पद 15। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसे काटता हो ढींग मारे? कुल्हाड़ा तो केवल एक साधन मात्र है। एक व्यक्ति के हाथ और कंधे के बिना वो किसी काम का नहीं। जब कोई उसे इस्तेमाल करता है, तभी उसके कार्य पता चलते हैं। वो काट सकता है। यशया अध्याय 10 पद 15। या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? दूसरे शब्दों में साधन को अपने आप में घमंड की आवश्यकता नहीं। सम्मान उसे क्यों मिलता है जो साधन का इस्तेमाल करता है? क्योंकि साधन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने वाले लोगों के लिए कितना अच्छा सबक है। क्या कुल्हाड़ा चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर या आरी चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध घमंड कर सकती है? मैं केवल परमेश्वर के हाथों का साधन हूं। मेरे जीवन के द्वारा जो भी कार्य हो उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, मैं एक साधन मात्र हूं। जब तक परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर ना हो, जब तक परमेश्वर मुझे इस्तेमाल ना करे, तब तो कुछ भी मैं करूं वो सब व्यर्थ है। परमेश्वर के हाथ के बिना किसी काम का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में मेरे द्वारा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरे द्वारा जो भी कार्य हुआ उसका श्रेय अपने ऊपर लेना केवल मूर्खता नहीं बल्कि गलत होगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के हाथ का एक साधन हूं। इसलिए श्रेय और सम्मान सब कुछ परमेश्वर को जाना चाहिए, ना कि साधन को। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में एक साधन है। यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, प्रभु का धन्यवाद दे, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए घमंड ना करें, ऐसा ना कहें, अरे मुझे देखो, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान था। इसी तरह हम अपने आप को श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल परमेश्वर के हाथ का साधन बने, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और उसके परिणाम के लिए महिमा परमेश्वर को दे, क्योंकि महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए जिसने इस महान कार्य को किया है। यशया अध्याय 10 पद 15 में आगे लिखा है, क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए? कदापि नहीं, अशूर मेरा सोटा तो है परंतु वो अपने आप चल नहीं सकता। यशया अध्याय 10 पद 15 से लेकर 19 तक, या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हर्ष्ट पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग किसी जलन होगी। इसराइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इसराइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वो उसके जाड़ जंखार को एक ही दिन में भस्म करेगा, और जैसे रोगी के शीन हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वो उसके वन और फलदाई बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उन्हें मिटा डालेगा और यहूदा से लौटने के बाद बाकी बचे हुए अशूर के सैनिकों को एक बच्चा भी गिन सकेगा। उसका कारण है उनका अपना घमंड, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने उन्हें इस्तेमाल किया उसके बदले इसका श्रेय अपने ऊपर ले लिया। ये दूर भविष्य की भविष्यवाणी भी है जो अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। अध्याय 16 और 26 में यशया आने वाले महाक्लेश के बारे में उल्लेख करता है। यशया अध्याय 10 पद 20, उस समय इसराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा ना रखेंगे, परंतु यहोवा जो इसराइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। क्रिस्त विरोधी उन्हें धोखा देगा, क्योंकि जब वो राज करने लगेगा इसराइल के लोगों के साथ वाचा बांधकर उनके मंदिर का निर्माण करने में सहायता करेगा। इस सहायता के कारण वे उसे मसीह मानने लगेंगे। रोचक बात यह है कि इसराइल के लोग आज भी यीशु मसीह को मसीह मानने को तैयार नहीं। रूढ़िवादी यहूदियों से बात करने पर पता चलेगा कि वे बताएंगे कि मसीहा किसी भी समय पर आ सकता है। वास्तव में देखा जाए तो बहुत साल पहले एक छोटा भविष्यत वक्ता हुआ करता था, जो हरेक गली में घूमकर लोगों को यूं बता रहा था कि उनका मसीहा 1981-82 में आने वाला है। वहां के लोग मसीहा की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि उस देश की स्थिति दयनीय है। बहुत साल पहले किए गए सर्वेक्षण में पता चला कि देश के 40% लोग प्रजातंत्र के बदले एक तानाशाही शासक चाहते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और तमाम समस्याओं को काबू में रखने में सरकार की नाकामयाबी के चलते राजनेताओं से लोग नाराज हैं। यदि आप किसी रूढ़िवादी यहूदी से पूछेंगे, आप मसीह को कैसे पहचानोगे, उनका जवाब यही होगा, वो हमारा मंदिर बनवाने में हमारी सहायता करेगा। रूढ़िवादी यहूदी इसी चाहत में है, एक व्यक्ति आएगा और उनका मंदिर बनवा कर देगा। क्रिस्त विरोधी वही काम करेगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना अध्याय 5:43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम में आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। और इसराइली लोग उसे सर पर उठाएंगे और कहेंगे, यही है मसीहा। वे कहेंगे कि हमें परमेश्वर का पुत्र नहीं चाहिए, हमें मूसा के समान एक व्यक्ति चाहिए, मूसा की तरह एक व्यक्ति जो उन्हें मंदिर बनवा कर देगा। ऐसा कहते हुए मैंने बहुत लोगों से सुना। बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आएगा और इसराइल राष्ट्र के साथ 7 वर्ष की वाचा बांधेगा, परंतु 3.5 वर्ष पश्चात वो वाचा को तोड़ देगा। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब वो उसमें खड़ा होकर घोषणा करेगा कि वही परमेश्वर है। यीशु ने कहा था कि जब वे उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को मंदिर में देखें जिसके लिए दानियल ने भविष्यवाणी की थी, तब जंगल में भाग जाएं। अपना कुर्ता लेने के लिए भी समय बर्बाद न करें, बस वहां से भाग जाएं। अब जो शेष बचेंगे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तब राष्ट्रीय मन परिवर्तन होगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और उसी पर भरोसा रखेंगे। वे इसराइल के महापवित्र परमेश्वर में सच्ची आस्था रखेंगे। इस प्रकार उनमें एक महान जागृति आएगी। यशया अध्याय 10:21-22, याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इसराइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यनाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है। परमेश्वर अपने दंड से संपूर्ण विश्व को नाश कर देगा, परंतु इसराइल के कुछ लोग बच जाएंगे। यशया अध्याय 10:23, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यनाश कर देना ठाना है। महाक्लेश का समय, यशया अध्याय 10:14-27। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यू कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर, चाहे वो सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यनाश करने शांत होगा, और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसे उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। ख्रिस्त विरोधी का जुआ जो वो इसराइल एवं अन्यों पर रखेगा तोड़ा जाएगा। अब हम हर मगिदोन के युद्ध की ओर अग्रसर है। यशया अध्याय 10 पद 28। वो आयात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सम्मान रखा है जो मिग्दोन के ऊपरी क्षेत्र में है। यशया अध्याय 10 पद 29 से लेकर 34। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी, रामा थरथरा उठा, शौल का गेबा भाग निकला है। हे गलीम की बेटी चिल्ला, हे लेशा के लोगों कान लगाओ, हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है, गेबिम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वो नोब में टिकेगा, तब वो सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छाट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। वो घने वन को लोहे से काट डालेगा और लेबनोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा। ये भविष्यवाणी आने वाले युद्ध के बारे में है। ये समय आने की भविष्यवाणी हर मिग्दोन युद्ध के लिए देशों को इकट्ठा होना और उनके अस्त्र शस्त्रों का इकट्ठा किया जाना। आने वाला 11वीं अध्याय बहुत ही रोचक है, जो यीशु मसीह की महिमा में आगमन का है। यशया 11:1। तब यशय के ठूंट में से एक डाली फूट निकलेगी। 11 अध्याय हमें एक महिमामय राज्य की ओर ले जाता है। 10वां अध्याय हमें परमेश्वर के महाप्रकोप के शुरुआत के बारे में बताता है। परंतु 11वें अध्याय में हम लोग एक महिमामय राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 10वें अध्याय में महाक्लेश और उजाड़ के साथ 11वें अध्याय में हम एक महिमामय दिन और परमेश्वर के राज्य को स्थापित होते हुए देखते हैं। प्रभु आपके साथ हो और आपका जीवन परमेश्वर का साधन बने। आपको अपने जीवन पर परमेश्वर के हाथ के एहसास का असामान्य आनंद प्राप्त हो। उसने मुझे साधन स्वरूप प्रयोग किया है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप उसके प्रेम को उन तक पहुंचाने में सफल हो जो अभी अंधकार में बैठे हैं। जब परमेश्वर आपको अपना काम करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, तब आप अपने जीवन में एक नए और बड़े ही विशेष रूप से परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें, यीशु के नाम में।